नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 15 अथवा 16। 15 का कोई तात्पर्य नहीं है इसलिए हम 16 भी लेंगे। श्लोक क्रमांक 15। मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा पणव गोमुखा दुंदुधुर यन घटानाध्य नेदुदुर्धु भयस्तथा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान के प्रस्थान करते समय उनके सम्मान में हस्तिनापुर के राजमहल में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, दुंधुरी तथा दुंदुभी एवं तरह तरह की वंशियां, वीणा, गोमुख तथा भेरियां एक साथ बज उठी। श्लोक क्रमांक 16। प्रसाद शिख आरूढ़ा कुरु नार्यो दृदिक्षया ववृषु कुसुमै कृष्णम् प्रेम व्रीडास्मिते क्षणाः। प्रसाद शिखरारूढा कुरु नार्यो दृदिक्षया ववृषु कुसुमै कृष्णम् प्रेम व्रीडास्मिते क्षणाः। प्रसाद शिखरारूढा कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषु कुसुमै कृष्णम् प्रेम व्रीडास्मिते क्षणाः। प्रसाद राजमहल की शिखर छत पर आरूढ़ा चढ़ी हुई कुरु नारियो कुरुवंश की नारियां दिदृक्षया देखने की इच्छा से ववृषु वर्षा की कुसुमय फूलों से कृष्णम कृष्ण पर प्रेम प्रेम तथा स्नेहवश व्रीडास्मित ईक्षणा लजीली हंसी से देखते हुए। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तात्पर्य, लज्जा स्त्रियों का अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है, इससे वे पुरुषों द्वारा सम्मानित होती हैं। महाभारत काल में अर्थात 5000 से अधिक वर्ष पूर्व भी यह प्रथा थी। जो लोग विश्व इतिहास से परिचित नहीं हैं, ऐसे अल्पज्ञ ही कहते हैं कि पुरुषों से स्त्रियों को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के आगमन से चालू हुई। महाभारत की यह घटना निश्चित रूप से सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी, मनुष्यों से बहुत कम मिलती थी और वे सब नीचे न आकर जहां कृष्ण थे राजमहल की छत पर चढ़ गई और वहीं से कृष्ण के प्रति सम्मान जताने के लिए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। यहां यह भी कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा रही थी। यह लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है, इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भले ही वे उच्च कुल की न हो या कम सुंदर हो, हमें इसका निजी अनुभव है। एक महतरानी स्त्रियोचित लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों की श्रद्धा भाजन बनी हुई थी। सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न नारियां सम्मान नहीं प्राप्त कर पाती, लेकिन एक लज्जाशील महतरानी सबों का सम्मान पा रही थी। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनने के लिए है, जैसा कि भारत के ऋषियों मुनियों की कल्पना थी। स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि से बना हुआ है। क्योंकि पदार्थ के साथ जीवित स्फुलिंग का संयोग है, अतएव यह सुंदर लगता है। कोई मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि ये अन्यों का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से अच्छी बनाई जाती है। मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी तथाकथित सुंदर स्त्री के मृत शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि आत्मा का स्फुलिंग ही सुंदर है और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य शरीर के बाह्य सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। इसलिए वैदिक वांग्मय हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है, लेकिन चूंकि अब हम अविद्या के अंधकार में हैं, अतएव वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष को मिलने के सीमित छूट देती है। वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत या मक्खन के समान है। नवनीत अग्नि के संसर्ग से अवश्य पिघलता है, अतएव आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास पास लाना चाहिए और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है। यह प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। इस अध्याय का शीर्षक है द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्रीमद् भागवत का यह जो पहला स्कंद है, इसमें हमें महाभारत के बहुत से प्रसंग सुनने मिलते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, अर्जुन और अन्य पांडवों को एकत्रित कर रणभूमि पर, कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जो युद्ध आयोजित किया उसका एकमात्र उद्देश्य था दुर्योधन और दुर्योधन जैसे अन्य राक्षसी राजा इनका वध करना और युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को राजा बनाना। और गीता में भगवान ने अर्जुन को इस विषय में कह भी दिया, हालांकि सारी गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई ताकि अर्जुन उठ खड़े होकर युद्ध करे, परंतु उसी गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं हर युग में अवतरित होता हूं दुष्कृति का नाश करने के लिए और जो सुकृति है जो साधु है उनकी रक्षा करने की। तो यहां पर हालांकि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि खड़े होकर मारो इनको, और इसी गीता में भगवान ने कह दिया कि मैं करता हूं ये सब, तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ सकते थे, भाई आप ही कहे हैं कि आप दुष्कृति का नाश करते हैं और आप ही बोल रहे हैं कि ये दुर्योधन दुष्कृति है, तो आप कीजिए नाश, मुझे क्यों लगा रहे हैं। तो मानो भगवान फिर कहें, हां मैं नाश करता हूं तुम्हारे द्वारा, तुम्हें यंत्र बनाकर। तो हालांकि दुर्योधन इत्यादियों को तो भगवान ने अर्जुन के द्वारा मरवाया, परंतु और भी बहुत से राक्षस थे जिनका वध स्वयं भगवान ने अपने ही हाथों से किया, कंस इत्यादि। और भगवान जब वृंदावन में थे तो भगवान वृंदावन में इसलिए अवतरित हुए, हालांकि राक्षसों का वध करने के लिए वृंदावन में अवतरित नहीं हुए, वो तो साइड बिजनेस हो गया। ये सारे राक्षस जो कंस भेज रहा था इनको मारना, भगवान आचार्य बताते हैं कि इन सभी राक्षसों को भगवान मारते थे रोज रोज, कोई ना कोई राक्षस आते थे, तो प्रयोजन यही था कि भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ खेलने जब जाते थे वन में गाय चराने खेलने, तो वहां पर ये राक्षस जब आते तो भगवान इनका वध कर अपने ग्वाल बालों के साथ पेट में भूख पैदा करते, क्योंकि कुछ अच्छा भोजन खाने से पहले भूख होनी चाहिए। तो भूख पैदा करने के लिए ये सारे राक्षसों का वध भगवान करते थे, ताकि कुछ परिश्रम होगा, कुछ थोड़ा वर्कआउट होगा तो भूख अच्छी लगेगी। तो ये प्रयोजन था देखिए। और हालांकि इस प्रयोजन के साथ साथ भगवान एक लीला उन्होंने उत्पन्न की, अघासुर वध बकासुर वध, ताकि हम लोग कृष्णा बुक में पढ़ सकें। जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान भगवान ने गोवर्धन धारण किया और 7 दिन 7 रात इतने बड़े पर्वत को भगवान छोटे से 7 वर्षीय अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठाए रखा, तो ये कैसे संभव? आचार्य प्रश्न पूछते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं कि ये संभव हुआ। तो भगवान ने ये लीला इसलिए रची ताकि हम अपने पूरे जीवन भर ये सोचते रहें, ये चर्चा करते रहें कि भगवान ने कैसे उठाया। नहीं तो इस संसार में हम किसी न किसी के विषय में तो प्रश्न पूछते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे कि नासिक में वर्षा देरी से क्यों हो रही है, हर वर्ष तो समय पे आती थी, इस वर्ष वर्षा देरी से क्यों हो रही है। तो कुछ ना कुछ प्रश्न पूछकर हमारी जिह्वा तो चलती रहेगी। इसीलिए आचार्य बताते हैं कि भगवान ऐसी रोमांचक लीलाएं करते हैं ताकि हम प्रश्न पूछकर ये चर्चा जारी रखें, जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाए रखें। तो भगवान ने इन सब राक्षसों का वध किया और इन सब राक्षसों का वध करने के साथ साथ भगवान अपने मित्रों के साथ इतना आनंद अनुभव कर रहे थे। जब अघासुर का वध किया, जब बकासुर और अरिष्टासुर ये सब असुरों का वध किया तो सब सखाओं के साथ, ऐसा नहीं कि अकेले जाकर किसी झाड़ी में इनका वध कर और भगवान फिर बताए मित्रों को कि अभी चलो वध हो गया, अभी किसी को कहना मत। रोज ये सारे मित्र जाकर बताया करते थे नंद यशोदा और अन्य गोप गोपियों को कि आज कृष्ण ने किसका वध किया, और रोज ये एक समाचार होता, इवनिंग न्यूज, रोज ये इवनिंग न्यूज मिलता नंद महाराज यशोदा और अन्य गोपियों को कि भगवान ने आज किसका वध कैसे किया, और वो आतुर रहते ये शाम के समाचार सुनने के लिए। तो एक सुंदर श्लोक में सनातन गोस्वामी वो कहते हैं कि भगवान हालांकि अवतरित हुए पृथ्वी का भार कम करने के लिए, जैसे मुकुंदमाला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर ने बहुत सुंदर कहा है, पृथ्वी भार नाशः मुकुंदः, कि श्री मुकुंद श्री कृष्ण उनका एकमात्र प्रयोजन था अवतरित होने का इस पृथ्वी के भार को कम करने के लिए, इसलिए वो अवतरित हुए। और पृथ्वी का भार किससे भारी होता है, किससे बढ़ता है, पाप कर्म से। जब पाप कर्म बढ़ते हैं तो पृथ्वी का भार भारी हो जाता है, तो इस भार को कम करने के लिए भगवान अवतरित हुए। अब नारद मुनि ने देखा कि जब भगवान वृंदावन में अवतरित हुए हैं और वृंदावन में भगवान ब्रजवासियों के साथ जो लीलाएं कर रहे हैं, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा कि भगवान वृंदावन से बाहर निकलेंगे, कोई आशा नहीं लग रही कि भगवान इस ब्रज धाम से बाहर निकलकर जो इतने सारे असुर बाहर हैं, कंस इत्यादि जरासंध और भी जरासंध के सारे पार्षद, ये सारे जो राक्षस हैं, इन सब का वध क्या वो कर पाएंगे, जब बाहर ही नहीं निकलेंगे तो वध कैसे करेंगे। तो सनातन गोस्वामी नारद मुनि का ये जो प्रश्न है इसको लेते हुए वो एक बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं, कृष्णेन न व्रज जन किल मोहितास्ते तैस्य व्यमोहि भगवान इति सत्यमेव गत्वा विस्मृत सही देव कार्यो। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे तो वो ब्रजवासियों से इतने व्यमोहित हो गए उनके प्रेम से कि भगवान अपना देव कार्य भूल गए। जैसे कई बार हम जब किसी कार्य में बहुत व्यमोहित हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, तो हम अपने आप की सुध बुध भूल जाते हैं। जब हम सोते हैं, जिस चीज में हमको आनंद मिलता है, सोने में इतना आनंद मिलता है कि जैसे ही हम लेटे तुरंत सारी सुध-बुध खो बैठते हैं कि हम कौन हैं, और उसके पहले हमारे परिचय इतना दृढ़ रहता है हमारे हृदय में, कोई हमें भुला नहीं सकता कि हमारा परिचय क्या है, क्या नाम है, हम कहाँ रहते हैं, किस कुल से हैं, ऐसा हमारा परिचय रहता है कि कोई उसे भुला नहीं सकता। परंतु देखिए, कोई चीज में जब हमें आनंद मिलता है तो तुरंत हम भूल जाते हैं अपने स्वयं के परिचय को, सोने में, कई बार खाने में, जब बहुत भूख लगी है और प्रसाद की प्लेट सामने है तो जब कोई पुकारता भी है हमें तो दोनों कान उस समय केवल वो जो प्रसाद सामने है यदि उसकी कोई ध्वनि सुनाई दे रही है, उसकी ध्वनि क्या है, प्रसाद की बाल्टी की आवाज, केवल वही कान, आंखें वही देख रही है, नासिका और जिह्वा तो खैर है ही। तो पूरी सुध-बुध हम खो बैठते हैं जब हम एकाग्रचित होते हैं कोई ऐसे कार्य में जिसमें हमें आनंद मिलता है। तो देखिए, भगवान को किस में आनंद मिलता है, अपने ही भक्तों के प्रेम के संग में, इसमें भगवान को सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। इसलिए भगवान भूल गए, हालांकि देखिए भगवान का एकमात्र उद्देश्य बताया गया है स्वयं उन्होंने ही कि मैं आता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए, और वही भगवान आकर भूल गए। अब हम में से यदि कोई भूल जाए, यदि हम ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस जाकर ऑफिस पहुंचकर हम भूल जाएं कि हम क्यों आए ऑफिस में, और वहां पर जाकर हम भूल जाएं कि यहां पर हमें क्या करना है। देखिए, किसी भी ऑफिस में वो जो काम करने वाला व्यक्ति एम्प्लॉय होता है उसे प्रशिक्षण दिया जाता है 1-2 साल, और उसके बाद में फिर माना जाता है कि रोज आकर जो प्रशिक्षण मिला है वो कार्य करेगा। मानो हर रोज उसे प्रशिक्षण दिया जाए वो भूल जाए कि क्या करना है उसे ऑफिस में, तो फिर बहुत बड़ी समस्या है। तो यहां पर देखिए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान आकर विस्मृत देव कार्यो, उनके स्वयं का जो देव कार्य है वो भूल जा रहे हैं वृंदावन में आकर। तो जब उन्होंने केशी का वध किया तो केशी के वध के पश्चात नारद मुनि वृंदावन में आते हैं, और वृंदावन में पहुंचकर नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण को एक लंबा लिस्ट दिखाते हैं, ये सारे राक्षस बाकी हैं और ये वृंदावन के बाहर हैं, और इनमें प्रमुख है श्रीमान कंस। तो आपको मैं याद दिलाने आया हूं, क्योंकि देखिए जो देवता हैं वो भगवान के समक्ष जाकर इतनी हिम्मत नहीं कर सकते भगवान को याद दिलाने के लिए कि आपका ये देव कार्य है, आप भूल चुके हैं, हरे कृष्णा आइए बाहर। तो जो देवता हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं, तो वो नारद मुनि जो हैं, नारद मुनि को आगे करते हैं कि आप जाकर, क्योंकि देवता वो सारे त्रस्त थे इन सब राक्षसों के वजह से, विशेष रूप से कंस। तो ये सारे देवताओं ने नारद मुनि को आगे भेजा कि लिस्ट लेकर जाओ और दिखाओ कि आप आए थे इन सब का वध करने के लिए, ये सब बाकी रह गए हैं और आप तो यहां पर आपकी पार्टी चल रही है वृंदावन में। तब फिर भगवान को अपना देव कार्य याद आया, तो तुरंत फिर उन्होंने योजना बनाई वृंदावन से बाहर आने की। और फिर जब भगवान ने योजना बनाई वृंदावन से बाहर आने की तो सारे ब्रजवासी किस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, इसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में, विशेष रूप से गोपियां। जब अक्रूर कृष्ण बलराम को वृंदावन से बाहर, और कहां पर, मथुरा पासी में, मथुरा ले जा रहे हैं केवल, और भगवान कहे हैं कि बस वहां पर थोड़ा मथुरा नगरी देखकर, मामा कंस ने बुलाया है, मामा कंस से भेंट कर वापस आ जाऊंगा, बस बताकर जा रहे हैं। फिर भी ये सारे ब्रजवासी इस प्रकार से विलाप कर रहे थे कि सारे आचार्य गण वो कहते हैं कि यदि भक्ति की पराकाष्ठा जाननी है तो वो हम इन ब्रजवासियों की उस तिथि से जान सकते हैं जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे, और वो कोस रहे थे अक्रूर को। हालांकि वो तो भगवान के अनन्य भक्त हैं और भगवान की योजना के अनुसार कार्य कर रहे थे, परंतु वो अक्रूर को कहते हैं कि तुम्हारा नाम कुछ ठीक नहीं दिया, किसी ने भी दिया होगा तो तुम्हारे नाम के अनुसार तुम्हारे अंदर क्रूरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अक्रूर। परंतु जो कार्य तुम कर रहे हो इससे अधिक क्रूर कार्य इस पूरे ब्रह्मांड में और कुछ नहीं, और वो क्या है, कृष्ण को हमसे अलग कर रहे हो। तो देखिए, ये हैं भगवान के सर्वोच्च भक्त गोपियां, और इनके कथनानुसार सबसे क्रूर कार्य क्या हो सकता है किसी के जीवन में, जब भगवान कृष्ण उसके जीवन से अलग हो जाएं। तो हम जो आध्यात्मिक संसार छोड़कर इस भौतिक संसार में आए, तो सबसे बड़ा क्रूर कार्य हमने अपने स्वयं के ऊपर किया। यहां पर तो इनके हाथ में कुछ नहीं था, भगवान स्वयं अपनी इच्छा से जा रहे हैं, और इसे ये सबसे बड़ा क्रूर कार्य कह रहे हैं। और हम अपनी इच्छा से, भगवान ने इतना कुछ दिया हमें आध्यात्मिक संसार में, परंतु हम अपनी स्वेच्छा से उसका दुरुपयोग कर भगवान को छोड़कर इस भौतिक संसार में आए, तो इससे अधिक क्रूर कार्य हमने आज तक नहीं किया। तो वास्तविक रूप में हम सबको क्या नाम मिलना चाहिए, क्रूर दास। तो वर्णन है कि जब रथ चालू हुआ तो ये सारी गोपियां रथ के पहिए के नीचे आने के लिए स्वीकृत हुए कि यदि ये रथ ले जा रहा है कृष्ण को वृंदावन से बाहर, तो क्यों ना ये रथ हमारे शरीर के ऊपर से जाए, ताकि हम उस दिन उस क्षण को देखने के लिए जीवित भी न रहें कि अब भगवान श्री कृष्ण हमारे मध्य में नहीं रहेंगे। तो ये उनका प्रेम था। और आचार्य हमारे बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने आगे चलकर उद्धव को भेजा वृंदावन में सांत्वना देने के लिए, तसल्ली देने के लिए कि मैं आ रहा हूं, तो जब उद्धव वो वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वर्णन ऐसा है कि उद्धव देखते हैं कि यहां पर दो नदियां बह रही हैं, हालांकि वृंदावन में एक ही नदी है, जमुना, परंतु उद्धव प्रवेश करते ही देखते हैं कि यहां पर ये दूसरी नदी कौन सी है जो जमुना से अधिक प्रवाह में बह रही है। तो उस नदी के तट पर चल चल कर उद्धव पहुंचते कहां पर है, नंद भवन, और वो देखते हैं कि ये जो नदी निकल रही है इसका उद्गम स्थान है नंद भवन। तो उन्हें आश्चर्य होता है कि नंद भवन से नदी कैसे आ रही है। जैसे जमुना का उद्गम स्थान है जमुनोत्री, वो कहां पर है? हिमालय पर। गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री, गोमुख, वो भी हिमालय पर। परंतु ये कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान है नंद भवन? तो जब वो नंद भवन में प्रवेश करते हैं तो वो आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि उद्गम स्थान कौन सा था। नंद महाराज और यशोदा माई के दोनों नेत्र, और वो नदी थी उनके अश्रुओं की, और वो उद्गम स्थान था, और उसके साथ साथ सारे अन्य जो गोपियां थीं, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी, इन सब की अश्रुओं की नदियां उसमें मिलकर। और ऐसा नहीं कि वो लोग एक जो कोप भवन होता है या शोक कक्ष होता है वहां पर बैठकर शोक कर रहे थे। जब भगवान ने कहा कि मैं कल आ रहा हूं वृंदावन, श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि जब कुरुक्षेत्र में आगे चलकर वो भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं, तो कहती हैं कि आपने वो जो एक वाक्य कहा था कि मैं दूसरे दिन आ रहा हूं, हालांकि आपके जाने के पश्चात मैं एक उस प्राणी के समान थी जिस प्राणी को एक कक्ष में बंद किया गया है और उस कक्ष को आग लगा दी गई है। वो मेरी स्थिति थी, श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि ऐसा कक्ष जिसके अंदर प्राणी को बंद किया है और चारों तरफ से और अंदर से उस कक्ष में आग लगा दी किसी ने। तो ज्यादातर जब ऐसी अग्नि जलती है तो प्राणी सबसे पहले भागते हैं बाहर। वन में भी जब वन की अग्नि दहकती है तो सारे प्राणी जो है वो भागकर वन के बाहर चले जाते हैं। परंतु श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि मैं क्यों इस कक्ष से बाहर नहीं भाग पाई, क्योंकि इस कक्ष के दरवाजे पर आपने खूंटी लगा दी थी और वो खूंटी से इस दरवाजे को बंद कर दिया था। और वो खूंटी कौन सी थी? आपके इस वाक्य की, ये जो आपने कह दिया था कि मैं दूसरे दिन आने वाला हूं, इस शर्त और ये जो आपका वाक्य था, इस खूंटी के वजह से इस कक्ष में उस पशु के समान मैं इतने वर्षों तक जल रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण वो अब विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी जो शरणागति है ब्रजवासियों की, वो मेरा हृदय तोड़ रही है। अब देखिए, यही भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि सभी जो मेरे भक्त हैं वो मेरे शरणागत होने चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज्य। और ये श्लोक चरम श्लोक है, श्री संप्रदाय का ये एक चरम श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य। और कितनी बार हमने ये श्लोक पूर्ण शरणागति के लिए उपयोग में लिया है, समझने के लिए, कहने के लिए। और वही कृष्ण जिन्होंने ये श्लोक कहा वो अब अपने शरणागत भक्तों को कहते हैं कि तुम्हारी शरणागति मेरे हृदय को भेद रही है, इतनी शरणागति मैंने नहीं मांगी थी, क्योंकि इसके बदले में मैं यदि अपने आप को भी दे दूं तो भी वो कम पड़ रहा है। ये शरणागति थी ब्रजवासियों की। तो उद्धव, उन्होंने जब आकर देखा कि सारे ब्रजवासी वहां पर वो प्रतीक्षा में हैं रोज माता यशोदा अच्छे पकवान जो भगवान श्री कृष्ण को पसंद आते थे वो बनाकर वो तैयार रहती थी कि आज कृष्ण आएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जब पहुंचेंगे तो शुरू करेंगे कुछ बनाना, फिर देखेंगे क्यों व्यर्थ में कुछ बनाकर वेस्ट कर रखें। रोज सारे ब्रजवासी तैयारी में रहते थे कि आज आने वाले हैं कृष्ण, और सुबह से लेके संध्या तक एक टक होकर वो मथुरा की तरफ देखते रहते बिना अपनी पलक झपके। और रोज जब देखते कि भगवान नहीं आए तो उस दिन फिर से चले जाते, फिर से दूसरे दिन सुबह सारी तैयारी के साथ। इसे कहते हैं उत्कंठा। इसीलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामर सिंधु में कहते हैं कि जब तक ये उत्कंठा, जब तक ये लौल्यम नहीं है हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण को पाने का, तब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे। तो उद्धव, उन्होंने जब देखा कि ये निरंतर अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं ये सारे ब्रजवासी, तो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे क्यों भेजा है यहां वृंदावन में, और वो असमंजस में पड़ गए कि मैं क्या, इन्हें क्या शिक्षा दूं, मैं यहां पर शिक्षा देने आया हूं या लेने आया हूं। और वो अपने आप से कह रहे थे कि सारे जो शास्त्र हैं, सारे जो वेद हैं, उनका निष्कर्ष क्या है कि हम भगवान श्री कृष्ण के लिए भाव विभोर होकर अश्रु प्रवाहित करें उन्हें पाने के लिए। ये सारे वेद शास्त्रों का निचोड़ है और ये लोग यही कर रहे हैं। तो मैं कौन से वेद, कौन से उपनिषद, कौन से शास्त्र से कोट कर इनको कहूं कि रो मत। इस संसार में जब कोई व्यक्ति विलाप करता है तो लोग आकर सांत्वना देते हैं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, रो मत। क्योंकि रोने का उद्देश्य कौन है? कोई भौतिक व्यक्ति या वस्तु या स्थिति। परंतु यहां पर उद्धव सोच रहे हैं कि विलाप करने की जो परिपक्व स्थिति है वो है भगवान श्री कृष्ण के लिए विलाप करना, और ये लोग पहुंच चुके हैं उस स्थिति में। मैं अपनी भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर यही पाना चाहता हूं, स्थिति को, तो क्या मैं इनको कहूं मत रो? अरे मुझे बैठकर रोना चाहिए इनके साथ, किस लिए? कि मुझे रोना नहीं आ रहा। तो ये स्थिति थी जब भगवान ने प्रस्थान किया वृंदावन से बाहर। जैसे यहां पर हम पढ़ रहे हैं, भगवान प्रस्थान कर रहे हैं, अब हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं। तो देखिए, भगवान ने अपना संग ब्रजवासियों को दिया केवल 11 वर्ष, और कुछ भगवान इस पूरी पृथ्वी पर थे 125 वर्ष। तो यदि हम उसमें से 11 वर्ष निकाल दें, कितने हो गए? 114 वर्ष भगवान ये पांडव और द्वारका वासियों के साथ उन्होंने बिताए। तो सोचिए कितना गहरा संबंध हो गया होगा इन पांडवों का और अन्य जो द्वारका वासी थे। अभी तो द्वारका जा रहे हैं, उससे पहले मैं भूल जा रहा हूं कुछ वर्ष भगवान ने मथुरा में कितने वर्ष बिताए, उसका भी विश्लेषण किया गया है बहुत से। और विशेष रूप से सारे पांडव जिनको ये पूरा हस्तिनापुर का राज्य मिला केवल भगवान श्री कृष्ण के कारण, और केवल राज्य नहीं बल्कि भौतिक रूप से जीवन दान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, और भगवान श्री कृष्ण एक प्रेषक के रूप में, एक पोस्टमैन के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से सेवा की इन पांडवों की। और इसीलिए युधिष्ठिर महाराज के विषय में कहा गया था कि युधिष्ठिर महाराज का सौभाग्य इतना था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल से, हिमालय से, पर्वतों से आकर युधिष्ठिर महाराज के राजमहल में रहते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग जंगल में गए थे भगवान श्री कृष्ण को खोजने के लिए, और श्री कृष्ण थे युधिष्ठिर महाराज के राजमहल में। तो ये अपने जंगल और अपनी गुफाओं को छोड़ छोड़कर ये युधिष्ठिर महाराज के राजमहल में आते थे, और सभी पूछते थे, भाई आप लोग सब विरक्त हैं, राजमहल में क्यों जा रहे हैं? अरे भाई क्या फायदा इस विरक्ति का, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा है वो तो बैठे हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में। तो ये युधिष्ठिर महाराज का सौभाग्य, पांडवों का सौभाग्य। तो सोचिए कि इनको छोड़कर जब भगवान अब प्रस्थान कर रहे हैं द्वारका की तरफ, तो इनके मन में क्या बीत रहा होगा। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में भी ये प्रसंग आता है, जब चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को छोड़कर दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकल रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण और उनके अनन्य पार्षद, जिनके अंदर इतना प्रेम भरा हुआ था चैतन्य महाप्रभु के प्रति, सबसे पहले तो वर्णन है जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, उसी वर्ष माघ के महीने में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। और चैतन्य महाप्रभु, देखिए, किसी को चैतन्य महाप्रभु ने बताया नहीं कि मैं संन्यास लेने वाला हूं। जैसे कि हमारी दीक्षा होने जाती है तो हम सबसे पहले ढोल नगाड़ा पीटते हैं, दीक्षा होने वाली है हमारी, और न्योता वगैरह देते हैं, दीक्षा में आना हमारी दीक्षा में। परंतु यहां पर देखिए प्रसंग है चैतन्य चरितामृत में कि जब श्रीवास ठाकुर, श्रीवास आंगन में जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, एक दिन रोज नृत्य किया करते थे, कीर्तन किया करते थे, तो वो उस दिन की घटना है जब श्रीवास ठाकुर का जो लड़का, उसका निधन होता है। ये आपने सुना होगा ये कथा। तो जब निधन होता है तो सारे घर की स्त्रियां बैठकर वो विलाप कर रही हैं, और उस विलाप की आवाज कीर्तन में बाधा डाल रही थी। तो श्रीवास ठाकुर जाकर उन सभी स्त्रियों को कहते, पूछते नहीं क्यों विलाप कर रहे हैं, चुप रहो, उन्हीं के पुत्र का निधन हुआ है, और वो सबसे पहले कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में बाधा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फिर किसी ने कहा श्रीवास ठाकुर को कि ये विलाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पुत्र का निधन हुआ है। तो देखिए श्रीवास ठाकुर की प्रतिक्रिया सुनने के पश्चात कहते हैं, अच्छा निधन हुआ है तो विलाप करो परंतु धीरे। और ये कहकर फिर से वो कीर्तन में आ गए, और उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि अरे सौभाग्य मानना चाहिए, विलाप क्यों कर रहे हो, कि यहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे आंगन में कीर्तन नृत्य कर रहे हैं, उस कीर्तन और नृत्य के मध्य में हमारे पुत्र ने शरीर त्यागा है, इससे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन व्यक्ति हो सकता है, तो तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए, और यदि तुम्हारे विलाप, विलाप करो, ठीक है विलाप करना स्वाभाविक है, विलाप करो जोर से नहीं, यदि आवाज जोर हुई तो एक तो तुम्हारा पुत्र गया है, मैं स्वयं गंगा में अपने आप को समाधिस्थ कर दूंगा। तो यहां पर अब ये डर गए भाई, क्या करें, किसके विषय में विलाप करें अब। तो चैतन्य महाप्रभु जब थोड़े समय बाद उन्होंने अपना नृत्य रोका, कीर्तन रोका और पूछा कि आज यहां पर मुझे उस प्रकार का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, कुछ तो हुआ है। तब फिर एक भक्त ने आकर कहा अद्वैताचार्य ने कि श्रीवास ठाकुर के पुत्र का निधन हुआ। कब? कुछ घंटे बीते, 6-7। 6-7 घंटे बीत चुके हैं और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं, आप कीर्तन जारी रखिए, महत्वपूर्ण बात नहीं है, तुम्हारे एकमात्र पुत्र उसका निधन हो गया, उसने शरीर त्याग दिया, कहां पर है? तुरंत चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ गए और वहां पर जब देखा तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको वापस पुनर्जीवित किया पहले। और फिर श्रीवास ठाकुर के पुत्र चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि आप ही के योजना के अनुसार मैंने अपना शरीर त्यागा और मेरा सौभाग्य कि आपके कीर्तन के मध्य में उसकी ध्वनि सुनते हुए मैंने अपना शरीर त्यागा। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आज से मैं और नित्यानंद प्रभु हम दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने आंख बंद कर श्रीवास ठाकुर की तरफ फिर से आंख खोल कर देखा और कहा कि कैसे संभव है कि तुम जैसे भक्तों को मैं छोड़कर एक दिन जाऊंगा। जब उन्होंने सबने ये सुना चैतन्य महाप्रभु के मुख से तो सभी वो वास्तविक विलाप था फिर उनका, और सभी आपस में चर्चा करने लगे कि चैतन्य महाप्रभु छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने एक संकेत मात्र सा दिया कि मैं संन्यास लेने वाला हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर, हालांकि उसकी कथा तो बहुत विस्तार से चैतन्य चरितामृत में है, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास किस प्रकार से लिया और संन्यास लेते समय सची माता, देखिए ज्यादातर कलयुग में लोग संन्यास ले लेते हैं क्योंकि बहुत त्रस्त जीवन रहता है, यदि आप किसी ब्रह्मचारी को पूछो कि आप ब्रह्मचारी बने हो तो किस स्थिति को आप छोड़कर ब्रह्मचारी बने, तो वो स्थिति आप सुनोगे तो कहोगे कि अच्छा किया छोड़ा उसको। तो इतना त्रस्त जीवन रहता है और इतनी कठिनाई, कोई प्रेम करने वाला नहीं, सब औपचारिकता दिखाते हैं इस संसार में, ये सारे रिश्ते नाते, इनको छोड़ना कोई बहुत विशेष बात नहीं है। परंतु यहां पर जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं यशोदामय जो सची माता है उनको छोड़ना और स्वयं विष्णुप्रिया जो स्वयं लक्ष्मी देवी है इनको छोड़ना कोई साधारण बात नहीं थी। और चैतन्य महाप्रभु सची माता को संकेत मिल चुका था, तो चैतन्य महाप्रभु उनके अंदर ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि सची माता के सामने वो बाहर जाएं। तो चैतन्य महाप्रभु मध्य रात्रि में मकर संक्रांति के एक दिन पहले वो अपने घर से मध्य रात्रि के समय बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो सची माता दरवाजे पर खड़ी रहती और वहां पर सची माता खड़ी हैं और जानती हैं कि निमाई कहां जा रहे हैं, और निमाई जानते हैं कि वो कहां जा रहे हैं। दोनों एक शब्द नहीं बोलते, खाली एकमात्र जो सच्ची माता में कुछ हलचल दिखती है वो है उनके अश्रुओं की, बस। और चैतन्य महाप्रभु देखिए, जो स्वयं प्रेम के स्रोत हैं, प्रेम के सागर हैं, उन्हें अपना हृदय इतना कठोर करना हुआ कि वो सची माता वहीं खड़ी रह गई, और चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रदक्षिणा की, दंडवत कर वो आगे निकले। और आगे जब गए कटवा, उस जगह पर जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती महाराज से संन्यास लिया, तो वहां की घटना है कि जो उनके जो सुंदर केश थे, वो केश उनका सर मुंडवाने के लिए जो व्यक्ति, जो नाई को बुलाया गया था, वो उसने मना कर दिया कि ये मैं कभी नहीं कर सकता। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने आग्रह कर करवाया, तो उसने कहा कि इसके पश्चात मैं अब आगे किसी के केश नहीं काटूंगा। और जब चैतन्य महाप्रभु के केश काटे जा रहे थे, तो उन केशों के साथ ऐसा लग रहा था कि वो नाई उस छुरी को सबके हृदय में चला रहा है, और सबके आंखों से अश्रु, यहां तक कि केशव भारती महाराज, उन्होंने कह दिया कि सच्ची माता से अनुमति लेकर आओ पहले। जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु फिर से निकले, केशव भारती महाराज ने रोक दिया कि आपके लिए क्या असंभव है। तो चैतन्य महाप्रभु ने माघ के महीने में संन्यास लिया, और उसके पश्चात फाल्गुन के महीने में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए, और सच्ची माता ने कहा कि जगन्नाथपुरी में रहो, क्योंकि जगन्नाथपुरी के सारे जो पार्षद हैं वो मुझे सुनाते रहेंगे तुम्हारा समाचार, और पास में है जगन्नाथपुरी। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु चैत्र के महीने में सर्वभौम भट्टाचार्य से मिले, उनका हृदय परिवर्तन किया, उन्हें भक्त बनाया। और फिर बैसाख के महीने में चैतन्य महाप्रभु ने अब निश्चय किया कि अब मुझे जाना है दक्षिण भारत की यात्रा, और निश्चय किया कि अकेले जाना है उन्हें। तो चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों को बुलाकर ये समाचार देते हैं कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा के लिए जाना चाहता हूं, और आपकी अनुमति चाहता हूं। जैसे कि यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की अनुमति ले रहे, और युधिष्ठिर महाराज अनुमति दे रहे, और भगवान निकलने से पहले युधिष्ठिर महाराज के चरणों को स्पर्श कर निकल रहे हैं। बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा ली, उनके चरणों का स्पर्श किया भगवान श्री कृष्ण ने, और भीम अर्जुन को आलिंगन किया, क्योंकि वो एक ही हम उम्र के थे, और नकुल सहदेव उनको आशीर्वाद दिया। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों को एक बार बुलाए, और नृत्य किया, कीर्तन किया, उसके पश्चात उनका गुणगान किया कि आप ही मेरे वास्तविक हित चिंतक हैं, क्योंकि आप मुझे जगन्नाथपुरी लेकर आए, जगन्नाथ जी का दर्शन कराया, और अब मैं आपका ही आशीर्वाद लेकर, आज्ञा लेकर दक्षिण भारत जाना चाहता हूं अकेले। तो सारे पार्षद स्तब्ध रह गए जब उन्होंने ये सुना कि संन्यास लेना तो ठीक था, अब आप हमें छोड़कर अकेले जाना चाहते। तो नित्यानंद प्रभु सबसे पहले आए, क्योंकि कोई कुछ कह नहीं पा रहा था चैतन्य महाप्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु आते हैं, और वो कहते हैं कि एक नौकर को आप ले जाइए, और एक जो आपका सेवक रहेगा, क्योंकि आप जब जप करेंगे तो आपका कमंडलू, आपके कपड़े, एक हाथ से आप जप करेंगे, एक हाथ से आप गिनेंगे कितना हुआ है जप, तो आपका कमंडलू, आपके कपड़े कौन पकड़ेगा? तो एक सेवक को आप ले जाइए, और ऐसा सेवक ले जाइए जो जानता है ये सारे तीर्थ स्थान, और वो कौन है? मैं, क्योंकि मैंने सब तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर लिया है। तो आप और किसी को नहीं, मुझे ले जाइए अपने साथ। बाकी सबको कहा नित्यानंद प्रभु ने, आप लोग सब यहां पे प्रतीक्षा कीजिए, मैं चैतन्य महाप्रभु को ये सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराकर सही सलामत ले आऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें ले जाऊं? अरे मुझे जब वृंदावन जाना था तो मुझे शांतिपुर पहुंचा दिया तुमने, और मेरे सन्यास का जो डंडा, जो एकमात्र सामग्रिक सन्यासी की होती है, उसका जो दंड होता है, उसे तोड़ दिया और फेंक दिया नदी में। तो तुम जैसे सेवक को ले जाऊंगा तो ये सारे कार्य जो तुमने किया है, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सारे कार्य के वजह से तो पता नहीं ये पूरी दक्षिण भारत में मैं किस स्थिति में कहां पर रहूंगा, बिल्कुल नहीं। तो अलग अलग जो सेवक थे उनका नाम आगे प्रस्ताव रखा गया उनका, जगदानंद पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जगदानंद पंडित, ये जगदानंद पंडित तो हर समय मुझे इंद्रिय भोग की सामग्री देता रहता है। एक समय ये जगदानंद पंडित बंगाल से 15 किलो चंदन का तेल मेरे लिए लेकर आए। मैं सन्यासी और मेरे लिए चंदन का तेल 15 किलो, और बंगाल से जगन्नाथपुरी। तो मैंने कहा भाई मैं सन्यासी हूं, चंदन का तेल लगाकर घूमूंगा तो लोग क्या कहेंगे, चंदन का तेल तो जगन्नाथ जी के लिए होना चाहिए। तो जगदानंद ने जब सुना कि मैंने अस्वीकार कर दिया ये 15 किलो चंदन का तेल ही जो लेकर आए, तो जगदानंद इतने क्रोध में आ गया, और वो क्रोध में आकर वो जोर से चिल्लाने लगा, कौन कहता है मैंने चंदन का तेल लाया है, लाओ इधर उसको। और वो पूरा 15 किलो मटका चंदन का तेल का उसे पटक कर नीचे जमीन पर बिखार दिया, और जाकर अपने आप को बंद कर दिया कमरे में, न मैं खाऊंगा न सोऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु को जाना पड़ा, और दरवाजा नहीं खोल रहे थे जगदानंद पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु बाहर से कहते हैं मैं आज प्रसाद के लिए आने वाला हूं तुम्हारे घर पर, प्रसाद बनाओ। तुरंत जगदानंद पंडित खड़ी हो गए, कुछ इंद्रिय भोग देने के लिए सुविधा मिली है। तो जगदानंद पंडित तुरंत उन्होंने इतने सारे व्यंजन बनाए, और चैतन्य महाप्रभु डर डर कर खा रहे थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को जब जगदानंद पंडित कुछ डाल देते जो उनको नहीं खाना था और हो गया तो उनका पेट भर गया था, तो चैतन्य महाप्रभु के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कहने की कि मैं ये नहीं खाऊंगा। जो कुछ डाला जा रहा था चैतन्य महाप्रभु डर के मारे उसे बका बक खा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये जगदानंद पंडित बिल्कुल नहीं। और मुकुंद, ये जो मुकुंद है, मैं जब पत्थर की शैया पर सोता हूं, जमीन पर सो जाता हूं, तो मुकुंद हालांकि वो कुछ कहता नहीं, परंतु विलाप कर करके रो रो के कि मैं कैसे जमीन पर सोया हूं, इस पर विलाप कर करके वो अश्रु प्रवाहित करने लगता है। तो वो दुखी होता है, उसे देखकर मैं और दुखी होता हूं। तो फिर नाम प्रस्तावित हुआ दामोदर पंडित। वो दामोदर पंडित ये एक ब्रह्मचारी है, और हर समय मेरे ऊपर छड़ी लेकर खड़ा रहता है। मैं सन्यासी हूं, ये ब्रह्मचारी है, छड़ी लेकर कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, सन्यासी का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। ये सेवक बनेगा मेरा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इन सारे पार्षदों की खोट निकाल रहे थे एक दृष्टिकोण से, परंतु वास्तविक रूप में चैतन्य महाप्रभु का प्रेम था ये। चैतन्य महाप्रभु इन सब का गुणगान कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु, जगनानंद पंडित, मुकुंद दामोदर पंडित, इनका गुणगान चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे कि इनके अंदर ये सारे गुण हैं, इतने ये प्रेम करते हैं मुझसे कि मैं भ्रमण नहीं कर पाऊंगा इनके साथ। ये वास्तविक रूप में चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे। इसीलिए जब भगवान, जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ा, हस्तिनापुर छोड़ रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु बंगाल छोड़कर अब जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी छोड़कर दक्षिण भारत जा रहे हैं, तो भगवान देखिए एक द्वंद्व में पड़ जाते हैं ऐसी स्थितियों में। और द्वंद्व क्या होता है भगवान के हृदय में? दो भावनाओं का, एक है प्रेम, एक है कृपा। तो ये जो दो भावनाएं भगवान के हृदय में हैं, प्रेम और कृपा, तो कृपा बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु को छोड़ना पड़ा ये प्रेम का संबंध। क्योंकि यदि चैतन्य महाप्रभु इन सब को छोड़े नहीं होते तो ये सारे, और एकमात्र उद्देश्य था, छल किया चैतन्य महाप्रभु ने। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान सभी पार्षदों को कहे कि मुझे विश्वरूप अपने भाई को ढूंढने जाना है, जो कि छल था। सभी जानते थे कि विश्वरूप शरीर छोड़कर वो भगवत धाम चले गए, परंतु चैतन्य महाप्रभु इस छल को सामने रखकर, बहाना को सामने रखकर वहां से अलग होना चाहते थे। इनके प्रेम संबंध को विच्छेदित कर वो जाना चाहते थे अपनी कृपा को बांटने के लिए। तो उसी प्रकार से एक जो प्रचारक होता है, एक जो प्रामाणिक प्रचारक होता है भगवान का, वो इसी द्वंद्व में रहता है कि क्या मैं भक्तों के संग के प्रेम में रहूं या भगवान की कृपा बांटूं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी सेवा कुंज में राधा दामोदर मंदिर में थे, वो इससे ऊंची जगह और क्या होगी किसी वैष्णव को अपने अंतिम समय को बिताने के लिए 70 वर्ष की उम्र में। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने इसी प्रकार से अपने हृदय के ये जो द्वंद में से कृपा को चुना, और कृपा वश, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति, कि कृष्ण की कृपा बांटने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने वो जो वातावरण था वृंदावन का, उसे छोड़कर बावरी, न्यूयॉर्क वहां पहुंचे। किसका उद्धार करने के लिए? हम सबका। तो भगवान श्री कृष्ण, हालांकि वो गोलोक वृंदावन में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और उनकी प्रमुख लीलाएं वही हैं, जब भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं वो प्रमुख लीलाएं हैं भगवान की। परंतु जब, जैसे कि कोई बहुत बड़ा मंत्री है या प्रधानमंत्री है, वो जब कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट खोलेगा तो वो खबर आएगी पेपर में, परंतु यदि वो किसी जेल में जाकर किसी शौचालय का उद्घाटन कर रहा है, जेल में शौचालय खुला है, वो न्यूज कभी पेपर में नहीं आने वाली कि प्रधानमंत्री ने जेल के शौचालय का रिबन काटा। तो ये भौतिक संसार जेल के समान, और इस जेल में स्वयं भगवान आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, हमें कुछ सुविधा प्रदान करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये कोई बहुत प्रमुख लीला नहीं है भगवान की, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती गोलोक वृंदावन में, वहां पर अनगिनत लीलाएं हैं जिनकी चर्चा होती रहती है गोलोक वृंदावन में, परंतु क्यों भगवान अपना धाम छोड़कर इस भौतिक संसार में आते हैं? कृपा, क्योंकि भगवान जो प्रेम का आदान प्रदान अनुभव कर रहे हैं उससे अधिक भगवान के हृदय में और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के अवतार में जो आए भगवान, वो उन इसलिए वो औदार्य, उनका उनका जो भाव है वो औदार्य भाव है, इसलिए उनका जो धाम है मायापुर धाम वो भी औदार्य धाम है। और वो उसका अर्थ क्या है? कृपा, कृपा बांटने के लिए। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि ये सारे जो प्रसंग हैं, यहां पर भगवान हस्तिनापुर को छोड़कर अब द्वारका में जा रहे हैं, तो एकमात्र उद्देश्य भगवान का ये सब कुछ छोड़कर अलग अलग जगहों पर जाने का यही था कि भगवान अपनी कृपा ज्यादा से ज्यादा बांटें। और भगवान से अधिक भगवान की कृपा बांटते हैं भगवान के भक्त, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया भारत में, और चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर सकते थे पूरे विश्व में, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि वो प्रचार मेरे लिए रख दिया ताकि भगवान मुझे श्रेय दे, मुझे श्रेय देना चाहते थे, इसलिए मेरे लिए वो रिजर्व रखा था। इसीलिए यदि हमें भगवान का प्रामाणिक भक्त बनना है तो केवल भक्तों के मध्य में रह ये जो आनंद है भक्तों के संग का, केवल इसे नहीं लूटना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ भगवान और परंपरा की जो कृपा है उसे बांटने के लिए थोड़ा हृदय पर हमें पत्थर रखकर बाहर जाना होगा। किसी को इच्छा नहीं होती बाहर जो ये सारे इंद्रिय भोगी हैं उनके मध्य में जाकर हम उन्हें भगवान के विषय में बताएं, जो सुनना भी नहीं चाहते, जो तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, नास्तिक हैं, परंतु उन्हें जा जाकर भगवान के विषय में बताना, उन्हें भक्त बनाना, ये है वो कृपा की भावना। तो जब तक वो कृपा की भावना हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम भगवान को पूर्ण प्रकार से प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज, वासुदेव दत्त, श्रील प्रभुपाद जी, ये सारे जो भक्त, इन्होंने भगवान को इस प्रकार से प्रसन्न किया है कि उसकी कोई तुलना नहीं। और हम इनके पदचिन्हों पर चलकर कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकेंगे? केवल हमें जो कुछ इन्होंने किया है उसे केवल ठीक से मेंटेन रखें। सारा प्रचार प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तकों द्वारा कर दिया है, हमें केवल जाकर वो देना है, हमें केवल जाकर पुस्तकों से पढ़कर सुनाना ना है कि ये भगवान की कृपा है। केवल इसे यदि हम मेंटेन रखें वही हमारा सबसे बड़ा योगदान रहेगा। प्रचार हम नहीं कर पा रहे, प्रचार कर रहे हैं प्रभुपाद जी, हम तो केवल एक पोस्टमैन, एक प्रेषक हैं, एक मैसेंजर हैं, और वही इस प्रसंग से हमें सीखने मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर कौन सा द्वंद्व चलता है, हमारे अंदर कौन सा द्वंद्व चलता है? इंद्रिय भोग करें, सोएं या जप करें? भगवान के अंदर कौन सा द्वंद्व चलता है कि मैं अपने धाम में प्रेममय संबंध का आस्वादन करूं या इसे छोड़कर अपनी कृपा बांटूं? ये द्वंद्व है भगवान के हृदय में। तो यदि हमें भी उस भगवत्ता को प्राप्त करना है अंश मात्र में, तो ये द्वंद्व हमारे अंदर आना चाहिए, तब जाकर हम एक प्रामाणिक भक्त, प्रामाणिक प्रचारक बनेंगे। श्रील प्रभुपाद जी की। किसी का कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।